आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज फतेहपुर सीकरी में करेंगी रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में तथा बसपा प्रमुख मायावती और योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में की जनसभा। बसपा ने 6 और भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। कैसरगंज से भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। कल होगी जांच। और संभल जिले में आगरा मुरादाबाद राजमार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कानपुर में रोड शो प्रस्तावित है। कानपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में श्री मोदी ये रोड शो करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा के साथ ही दूसरी तैयारियां पूरी कर रहा है। रोड शो के व्यवस्था प्रमुख सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि श्री मोदी गुरुद्वारे में माथा टेककर रोड शो की शुरुआत करेंगे। लोगों के लिए श्री मोदी को नजदीक से देखने और मिलने के लिए सड़क के किनारे 40 ब्लॉक बनाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी से इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ चिकरवार के समर्थन में फतेहाबाद में रोड शो करेंगी। लोकसभा चुनाव के 3रे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल बरेली, बदायूं और सीतापुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। बरेली में रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि लोग इस बार अराजकता और भाई भतीजावाद की बजाय विकास को चुनने जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मैनपुरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। एटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में एक राजनीतिक रैली में हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा की जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने हाथरस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के 3रे चरण में प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। इसमें संभल की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस पिछले 40 वर्षों से नहीं जीती है तो भाजपा आज तक सिर्फ एक बार जीत पाई है। समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली इस सीट पर इस बार पार्टी ने स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क के नाती जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने 2019 के उपविजेता परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने चौधरी सौलत अली को प्रत्याशी बनाया है। संभल सीट की सियासी तस्वीर पर हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं संभल, चंदौसी, असमोली, कुंदरकी एवं बिलारी शामिल हैं। सीट पर 18,97,882 मतदाता हैं। संभल लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 2 बार, रामगोपाल यादव 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार सपा ने पहले शफीकुर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसके बाद पार्टी ने उनके नाती जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है, जो कि वर्तमान में कुंदरकी विधानसभा से विधायक हैं। वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उप विजेता रहे परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने चौधरी सोलत अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। अरुण कुमार, आकाशवाणी समाचार, संभल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _ GKP पर भी उपलब्ध है। कैसरगंज और रायबरेली सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी ने रायबरेली सीट से राज्य सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। दिनेश प्रताप सिंह वर्तमान में यूपी में विधान परिषद के सदस्य हैं। 2019 में ये एकमात्र सीट थी जिसे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रही हैं और कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने कैसरगंज के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्रों सहित विधानसभा उपचुनाव के लिए लखनऊ पूर्वी सीट पर पार्टी उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आजमगढ़ और डुमरियागंज सीट से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। आजमगढ़ सीट से श्रीमती सबीहा अंसारी की जगह अब मशहूद अहमद चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गोंडा लोकसभा सीट से सौरभ मिश्रा, डुमरियागंज सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज लोकसभा सीट से नरेंद्र पांडे, संतकबीरनगर सीट से नदीम अशरफ, बाराबंकी लोकसभा सीट से शिव कुमार दोहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से आलोक कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। इस चरण में अब तक विभिन्न दलों के 100 से अधिक प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। इसी क्रम में कल बांदा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कृष्णा पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। फतेहपुर सीट से बसपा प्रत्याशी मनीष सिंह पटेल, झांसी संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस चरण के लिए दाखिल नामांकनों की जांच कल की जाएगी और 6 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। उधर 6ठें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जौनपुर जिले के मछली शहर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस चरण के लिए अब तक 33 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 6ठें चरण में प्रदेश की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 25 मई को होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के वास्तुकला एवं योजना संकाय के प्रदर्शनी कक्ष में कल लोक कला उत्सव का उद्घाटन वरिष्ठ कलाकार प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल और वास्तुकला संकाय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ऋतु गुलाटी ने किया। कल तक चलने वाले इस 3 दिवसीय अखिल भारतीय लोक और जनजातीय कला शिविर में उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम के 11 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय लेखक अमित राजपूत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है। उनको ये सम्मान न्यूनतम आयु में प्रतिमानित स्तंभ आलेख के लिए प्रदान किया गया है। अमित राजपूत का नाम एक स्तंभकार के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में आगरा मुरादाबाद राजमार्ग पर कल परिवहन विभाग की एक बस ने ओवरटेक करने के दौरान एक चारपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस टक्कर में चारपहिया वाहन में सवार 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायल लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वाहन में सवार लोग रामपुर से वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज फतेहपुर सीकरी में करेंगी रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में तथा बसपा प्रमुख मायावती और योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में की जनसभा। बसपा ने 6 और भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। कैसरगंज से भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। कल होगी जांच। और संभल जिले में आगरा मुरादाबाद राजमार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।